ओम ज्ञान speak on the regular verse. I'll speak from 16th chapter, paper currency.
English?
Hindi, English, whichever.
Dai chesi kshama chayandi telugu radu.
Hindi,
that much I know.
हम लोग सुबह पेपर करेंसी के बारे में चर्चा कर रहे थे. तो सुबह श्रीमद् भागवतम से समन विल ट्रांसलेट फॉर यू बोथ ऑफ यू. ही विल कम इन फ्यू मिनट्स. I think Madhav would be able to do better, right? You should be able to. Dada, no? Vijay Prabhu, you must be.
Okay.
You'll be able to do. Okay. Paper currency. हाउ इट इज़ कनेक्टेड. वो हम लोग यहाँ पर भक्ति के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करना चाहिए. तो क्यों हम लोग पेपर करेंसी के बारे में चर्चा कर तो उसका संबंध है. लेकिन जब हम लोग भगवद्गीता प्रचार करने के लिए जाएंगे तो लोग बोलेंगे मेरे पास धन नहीं है, आप क्या ये भक्ति भक्ति बोल रहे हो, ऐसे बोलेंगे ना. तो इसलिए ये सब भगवान पहले ही ये सब चर्चा कर चुके हैं भगवद्गीता में. और गीता का ज्ञान क्या है, परिपूर्ण है. दुनिया में कोई भी विषय हो तो सबके ऊपर हम लोग गीता के आधार पर चर्चा कर सकते हैं. दुनिया में जो भी विषय हो तो ये भगवद्गीता का परिपूर्ण ज्ञान काम है. तो 16वें अध्याय, इस अध्याय में भगवान दैवी और असुरी गुणों का चर्चा करते हैं. तो सृष्टि के आरंभ से दो प्रकार के जीव, दैव और असुर, देव और असुर, दो प्रकार के जीव हुए हैं. तो पहले अलग अलग लोकों में रहा करते थे असुर लोग और देव. तो फिर सतयुग में, त्रेता युग में वो असुर लोग पृथ्वी पर आ गए. एक ही लोक में दोनों रहा करते थे लेकिन उनका अलग अलग राज्य हुआ करता था. जैसे हम लोग देखते हैं लंका, हाँ, लंका में रावण और अयोध्या में भगवान राम. और त्रेता द्वापर युग में क्या हो गया, सभी एक ही परिवार में असुर और सुर दोनों आ गए. जैसे हम लोग देखते हैं कंस, हाँ, भगवान कृष्ण के तो परिवार में है, उनके मामा के रूप में, हाँ, और दुर्योधन, युधिष्ठिर, हाँ, है ना. तो ऐसे सब लोग, हाँ, एक ही परिवार में आ गए. और कलियुग में सबके अंदर असुरी और दैवी दोनों गुण हैं. तो भगवान इसलिए इसको विस्तार से वर्णन करते हैं भगवद्गीता में. जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करते हैं, भक्ति जीवन स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे जो बुरे गुण हैं उनको हमें निकालना होता है. पहले तीन श्लोक में, 16वें अध्याय के पहले तीन श्लोकों में दैवी गुणों का वर्णन करते हैं भगवान। और उसके बाद पूरा जो अध्याय है वो असुरी गुणों को वर्णन करने में ही समर्पित किया भगवान ने। तो असुरों को दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, तो हमेशा दम्भ, दम्भ का अर्थ है कि वो धार्मिक नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी धार्मिक दिखाते हैं, दम्भ, दम्भाचार। सो दर्प एरोगेंट, तो अभिमान, तो ये सब क्रोध पारुष ये सब असुरी गुण हैं भगवान वर्णन करते। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ वर्णन करते हैं। और 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम धम्बमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा साद्ग्राहण प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। तो ये असुर लोग क्या है, काममाश्रित्य दुष्पूरम, वो काम आश काम में आश्रित आश्रय लेते हैं। दुष्पूरम मतलब वह काम जो संतुष्ट नहीं होता है उसको दुष्पूरम कहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो वो एक एक बदमाश था, हाँ वो शो रजनीश, कोई नहीं है ना उनका अनुयायी यहाँ पर फिर मुझे तकलीफ हो जाएगा। तो उसने क्या कहा बताया, आप काम को पूरा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमेशा उसका पूरा करते जाओ, एक दिन उससे विरक्त हो जाओगे ऐसे। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं, दुष्पूरम कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। इसके पहले तीसरे अध्याय में भी भगवान बताए थे, आवृतम ज्ञानमेते न ज्ञानिनो नित्य वैरे न काम रूपे न कौंते या दुष्पुरे न नले न छा। तो भगवान कहते हैं कि वहाँ पर भी दुष्पूर दुष्पूरे न शब्द आता है ना, तो कभी संतुष्ट नहीं होता है। वहाँ पर उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे अग्नि में आप ईंधन डालते जाएंगे तो कभी अग्नि खत्म हो जाता है होता है नहीं, वो बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए इसको संतुष्ट करने से वो कभी खत्म नहीं होता है। तो वो सिर्फ वो ऐसे जो तथाकथित जो साधु होते हैं ऐसे प्रचार करते हैं, और बंदर बंदरिया जैसे लोग उनका अनुगमन करते हैं जिनको बहुत सारा काम वासना को पूरा करना होता है। विशेष करके बॉलीवुड में उसका बहुत सारा अनुयायी थे क्योंकि वो लोग वही चाहिए ना उसको, उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना काम वासना को पूरा करना चाहिए। तो और भगवान वो बोलते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति को भी, जो ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को भी वो आवृत करता है, और जीव का एक सर्वोच्च शत्रु है ये काम। हम लोग दुनिया में बहुत अलग अलग, भारतवासी लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है या पाकिस्तानी सोचते हैं भारत वाला शत्रु है, लेकिन काम सबका शत्रु है। सो काम आश्रित्य दुष्पूरम धम्बमान मदान्विता। तो दम्भ का हम बताया क्या अर्थ है, माना तो वो सभी उनको सम्मान करना चाहिए, मान की भावना। तो मदान्विता, तो मदान्विता मीन्स एब्जॉर्ब्ड इन कंसाइट। सो वो हमेशा अपने जो प्रभाव है उसमें डूबे रहते हैं। तो मोहात ग्रहित्वा सा ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः, मोहग्रस्त होकर मोहात ग्रहित्वा साध, तो असत को वो हमेशा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। असत मतलब वह जो अस्थाई चीज वस्तुएं हैं जो शाश्वत नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए, ये जो आसुरी गुणों का भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वो पूरी तरह से आधुनिक समाज को लागू होता है। तो ये सभी गुण आप लोगों में आप देखेंगे, आप में नहीं, आप सब लोग अच्छे भक्त हैं, यहाँ पर आए हैं। तो आप, हम लोग देखते हैं आजकल लोग इतना सारा चीज़ों को इकट्ठा करने में हमेशा लगे रहते हैं। ये आज हम बता रहे थे, वो शॉपिंग करना, वो एक शॉपिंग सिंड्रोम, एक रोग है आधुनिक समाज का। हाँ, बहुत सारे रोग है अलग अलग प्रकार, इधर उधर जाके हमेशा एक पिक्चर लेना। तो आजकल वो सेल्फी मोबाइल आ गया है ना, सेल्फी मोबाइल, अपना पिक्चर लेके दूसरों को दिखाना। तो ऐसे असत चीज़ों को हमेशा इकट्ठा करने में लोग लगे रहते हैं, जो शाश्वत काल में ये अलग अलग भौतिक जगत में चीज़ वस्तु, ये क्या हमारे शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वो भी अस्थाई है। तो मोहात गृहीत्वा सत ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। तो अशुचि व्रत, हमेशा वो अशुद्ध कार्यों में लगे रहते हैं। अशुद्ध कार्य मतलब ये पाप कार्य में, विशेष करके कलियुग में 4 प्रकार के पाप कार्य होते हैं, मांस खाना, मदिरा और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करना, तो व्यभिचार करना, स्त्री संग करना, और जुआ खेलना, गैम्बलिंग। तो आजकल इंटरनेट में गैम्बलिंग होता है ना, है कि नहीं? तो ये अशुचि व्रत है। तो ये लोग हमेशा इसमें लगे रहते हैं, असुरी लोग। चिंताम अपरे में याम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। तो 16.11 and 12। तो चिंताम अपरमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कामोपभोग। उसमें वो बहुत, दे आर वेरी कन्विंस्ड, निश्चित मतलब वो दृढ़ संकल्प है उसमें, मेरा जीवन का लक्ष्य है जितना हो सके उतना काम भोग करना। तो ऐसे दृढ़ संकल्प रहते हैं ना, दुनिया में सभी लोग यही सोच रहे हैं ना, जितना हो सके उतना इंद्रिय भोग करना है कि नहीं? कामोपभोग परमा, परमा मतलब सर्वोच्च जीवन का लक्ष्य है यही, ऐसे वो लोग दृढ़ संकल्प है वो, निश्चिता। इसके कारण क्या हो जाता है? चिंताम अपरमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता, जीवन के मृत्यु तक, प्रलयांतम मतलब मृत्यु तक, मृत्यु के समय तक बहुत सारे चिंताओं में डूबे रहते हो। क्योंकि चिंता मतलब क्यों चिंता आता है हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मन में? क्योंकि हम लोग असत चीजों से आसक्त रहते हैं। पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ा ना, असत ग्राहन, तो जो अस्थाई चीज है उसमें, उससे आसक्त रहते हैं, इसके कारण चिंता आ जाती है। क्योंकि हमेशा चिंता रहती है कि मैं इसको खो जाऊंगा या मुझे ये प्राप्त नहीं होगा। तो प्रहलाद महाराज भी अपने पिता को बोल रहे थे, हे असुरों में श्रेष्ठ, ऐसे उन्होंने असुरवर्या ऐसे वो कहते हैं। सो तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सता सदा समुद्विग्न दियाम असद्ग्रहात्। तो हिरण्यकश्यपु पूरा दुनिया का स्वामी बन गया, लेकिन हमेशा चिंता में था कब मुझे देवता लोग आके मार देंगे, या कब भगवान विष्णु आके मुझे, भगवान विष्णु आके मारेंगे। तो उनके पुत्र उनको समझाया उन्होंने, तुम इतना चिंता में डूबे रहे हो, समा सदा समुद्विग्न दियाम असद ग्रहात, क्योंकि असत चीज़ों को क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उससे आसक्त हो गए हो। ये शरीर, परिवार, भौतिक जगत सब असत है ना, और इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ है, वस्तु है, तो इससे आसक्त रहेंगे तो हमेशा चिंता में रहेंगे हम लोग। और चिंता मपरिमेयाम च, इसका एक और है, जीवन के अंत तक प्लान करते रहना, कि कैसे इंद्र तृप्ति को पूरा करना है करके, इंद्रिय भोग को, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है? कामोपभोग परमा, इसके कारण जीवन के अंत तक प्लान करते रहते। यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में एक उदाहरण देते, क्योंकि वो अलाहाबाद में जब वो गृहस्थ उनके पूर्व आश्रम में गृहस्थ आश्रम में थे, तो वो एक वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस चलाते थे प्रभुपाद जी। तो उस समय उन्होंने वहाँ पर देखा एक व्यक्ति, वो मृत्यु शैया पर है, वो मर रहा है, लेकिन डॉक्टर को क्या बोल रहा है, डॉक्टर मुझे कम से कम 4 साल तो बचाइए, मेरा बहुत बहुत सारे प्लान है, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो इसलिए चिंता में परे में या मृत्यु तक ऐसे प्लान करते रहना। तो प्रलयांतम उपाशिता, तो आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। तो आशा पाश शतैर्बद्धा, हजारों हजारों इच्छाओं से बद्ध बंधित रहते हैं वो लोग। आशा पाश शतैर्बद्ध, आप देखेंगे तो हर एक क्षण मन में कितने सारे इच्छाएं आते रहते हैं ना हमारे मन में, कभी ऐसा भी बताया गया। तो ये पूरा आकाश को कागज बनाएंगे और पृथ्वी पर जितना भी वृक्ष है वो क्या बनाएंगे, पेन बना फिर उसका पेन बनाएंगे, समुंदर को इंक बनाएंगे, तो भी इच्छाएं खत्म नहीं होते, आप लिखते जाएंगे तो। तो आशा पाश शतैर्बद्धा, विशेष करके असुर लोग क्या है, ये भौतिक इच्छाओं से हजारों हजारों इच्छाओं से भरे रहते। काम क्रोध परायणा, तो वो हमेशा काम क्रोध में मग्न रहते हैं। परायण शब्द का भी बहुत, ये शब्द बहुत शास्त्रों में बहुत बार आता है। तो श्रीमद् भागवतम में भक्तों को वासुदेव परायण बताया गया, जो हमेशा भगवान वासुदेव में मग्न रहते हैं, या नारायण परायण बताया गया। मुक्तानामपि सिद्धानां वासुदेव परायण सुदुर्लभो प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने, ऐसे। तो सभी मुक्तों में और परिपूर्ण जो सिद्धि प्राप्त की है जीवन में, वैसे करोड़ों करोड़ों लोगों में एक वासुदेव परायण जो भक्त है, हमेशा जो भगवान वासुदेव ने में मग्न रहते हैं, तो उनको वो जो हमेशा प्रशांत रहते, प्रशांत आत्मा, प्रशांत मतलब उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहते, तभी शांत हम लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं। लोग दुनिया में बहुत सारे लोग शांति के बारे में सोचते हैं ना, या हम लोग भी हमारा मेरा मन ही शांत नहीं रहता है तो शांति चाहिए, ऐसे हम लोग सोचते हैं ना। जब तक हृदय में भौतिक इच्छा नहीं रहते तब तक शांति नहीं रहती। इसके बारे में भी दूसरे अध्याय में भगवान बताए थे। तो जब इंद्र तृप्ति की इच्छाएं रहते हैं तो अशांत रहेंगे, अशांत रहेंगे तो सुख कहाँ मिलेगा, अशांतस्य कुतः सुखम, ऐसे भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में। तो प्रशांत आत्मा सुदुर्लभो, प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि, तो ऐसे भक्त जो वासुदेव परायण है हमेशा और प्रशांत है, उनको कोटि कोटि लोगों सिद्ध और योगी मुक्त लोगों में भी प्राप्त करना मुश्किल है, ऐसे भक्त लोग कैसे विरल विरल है। शिल प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आंदोलन क्या है, ऐसे व्यक्तियों का आंदोलन है जो कृष्ण में दोज हु आर सिंपली सेटिस्फाइड रिमेम्बरिंग कृष्ण, भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए जो संतुष्ट रहते हैं हमेशा, ऐसे व्यक्तियों का ये आंदोलन है, ऐसे वो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट, ऐसे भगवान प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कृष्ण भक्ति में, हम लोग कृष्ण वासुदेव परायण बन रहे हैं, या कृष्ण परायण या नारायण परायण बनने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असुर लोग क्या है, काम क्रोध परायण है वो लोग। तो यहाँ पर वो काम क्रोध परायण इहंते कामोपभोगार्थम अन्याय अर्थ संचयान, तो ऐसे काम भोग को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, अन्याय अर्थ संचयान, तो इलीगल वे ऑफ अक्यूमुलेटिंग वेल्थ, तो अन्याय से धन संचय करते हैं वो लोग। तो अन्यायन अर्थ संचयन, तो अन्यायन अर्थ संचय मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो गलत तरीके से जो अर्थ को संचय करना। विशेष करके भारत किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता है ना? ब्राइब ब्राइब हाँ आप जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है ना, है कि नहीं? तो ये पूरा देश क्या है, भ्रष्टाचार के वातावरण से पूरी तरह से सैचुरेटेड, मतलब हम लोग वो पारायण शब्द सैचुरेशन वो भी हम लोग कह सकते हैं, सब लोग उस भ्रष्टाचार में पारायण है ऐसा पूरा। तो ऐसे अन्यायन अर्थ संचय, लोग क्या करते हैं, धन संचय करते हैं। एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अन्यायन अर्थ, आप टेक्निकली आपको ये समझना चाहते हैं अन्यायन अर्थ शब्द का क्या अर्थ है, कि धर्म के अनुसार धन या जो संपत्ति है उसको संचय करके छोड़कर अन्य जो भी है वो सब अन्यायन अर्थ है। तो इसका अर्थ है पूरा जो भी हम लोग जो जॉब करते हैं, जो भी हम लोग धन हम लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, सब अन्याय अर्थ संचय है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम में क्या होता था, धर्म को पालन करते थे उससे क्या अर्थ प्राप्त होता था, और काम उससे वो लोग उनके भौतिक इच्छाओं को हम उनके जीवन जीवन चलाते थे और अंत में मोक्ष प्राप्त कर देते। तो आधुनिक समाज में लोगों को धर्म नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, और बीच में जो दो है अर्थ और काम चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे, और लोगों को पता नहीं है आजकल कि धर्म और अर्थ से क्या संबंध है वो भी पता नहीं है। तो धर्म पालन करने से कैसे अर्थ का संपत्ति का प्राप्त होता है उसको लोगों को पता नहीं है। तो पहले जमाने में वो ऐसा व्यवस्था था कि ब्राह्मण अपना धर्म पालन करते थे, क्षत्रिय अपना धर्म पालन करते थे, वैश्य अपना धर्म का पालन करते थे और शूद्र अपना धर्म का पालन करते थे। वो लोग सोचते, उनको ऐसा चिंता नहीं रहता था क्या मुझे अपने जीविका के लिए धन संपत्ति या अर्थ प्राप्त होता है क्या नहीं, वो अपना अपना धर्म पालन अपना कार्य करते थे, वो कर्तव्य करते थे। हाँ ये चीज़ भगवद्गीता में आरंभ से अंत तक आपको मिलेगा कि भगवान क्या करते हैं, कर्तव्यबद्ध होकर अपने धर्म को पालन करो, ऐसे बार 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 अर्जुन को समझा रहे हैं भगवद्गीता में। तो क्या फल मिलने वाला है उसके बारे में चिंता मत करो, ऐसे वो कहते हैं। तो पहले जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे, मेरा यह धर्म है कर्तव्य है मुझे करना है बस। तो वो अपने आप क्या है, उनको अर्थ प्राप्त हो क्योंकि वो धर्म को पालन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण क्या करेंगे, वो मार्गदर्शन करेंगे खेती करने वालों को कि अभी बारिश अभी नहीं आने वाला है, थोड़ा देर के बाद आएगा, अभी तुम बीज मत बो। तो वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो सब उनको पता चल जाता था, तो वैसे उनको सहायता करते थे। और जो कृषि करते हैं वो लोग क्या करेंगे, दान देंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे और क्षत्रियों को क्या करेंगे, टैक्स, तो उनको टैक्स देंगे। और क्षत्रिय उनका उनका क्या होता है, रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है, क्योंकि भौतिक जगत में हमेशा क्या है, कुछ अच्छे बुरे लोग हमेशा रहते हैं, कुछ बुरे लोग बुरे लोगों से प्रजाओं को रक्षा करना होता है। तो और हमेशा धर्म को बना के रखना होता है समाज में, तो वो क्षत्रिय का कार्य होता है। और सभी रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नियम को लागू करना होता है। तो और शूद्र भी क्या सहायता करते हैं, कोई कारपेंटर हो, कोई वॉशरमैन हो, बार्बर हो, हर रोज उनको कोई बार्बर आपका हेयर कटिंग करता है बाल काटता है तो हर रोज उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, साल के अंत में उसको कुछ दान देना होता है। हाँ वो अलग अलग लोगों से जो दान इकट्ठा करके उसको जीवन पूरा साल भर के जो जो भी चाहिए जितना चाहिए उसको इकट्ठा हो जाता था। तो लोगों को चिंता नहीं था। तो लेकिन यहाँ पर अन्यायन अर्थ संचय, असुर लोग अन्यायन अर्थ संचय, उनको इतना इतने हजारों हजारों आशाएं रहते हैं, जीवन का लक्ष्य काम भोग करना होता है, इसलिए वो लोग हमेशा चिंता में रहते। तो धर्म पालन करके अर्थ को संचय करना, तो वो न्याय है। अन्याय मतलब अधर्म से। तो आधुनिक समाज में सभी क्या अन्याय अर्थ संचय पूरा, क्योंकि कोई धर्म कर्म उनको कोई ना जानते नहीं। तो फिर आगे भगवान बोलते हैं, हम उसको थोड़ा और चर्चा करेंगे, अन्याय अर्थ संचय को, पेपर करेंसी कैसे वो चीटिंग है। तो इदम अद्या मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। तो वो यहाँ पर वो लोग जो असुर लोग कैसे सोचते हैं, प्लान करते हैं उसके बारे में। तो इदम अद्य, आज इतना है मेरा, मया लब्धम, तो मैं और इतना मुझे प्राप्त होगा। तो इमम प्राप्त से मनोरथम, मेरे प्लान के अनुसार और इतना मैं आगे जाके इकट्ठा करूंगा, है ना। दुनिया में सभी लोग ऐसे ही सोच रहे हैं ना, है कि नहीं। तो इतना आज है मेरा और आगे इतना होगा करके, है कि नहीं। सब लोग यही सोच रहे हैं अपने मनोरथम प्लान के अनुसार। वो लोग पैसा कमाने के, धन कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मनोरथम। हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन बोलते थे, वो मनोरथम स्पेकुलेशन करके स्टॉक मार्केट में धन ऐसे इन्वेस्ट करना और इंटरेस्ट प्राप्त करना, ये सब चीज़ करते हैं। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। तो इतना मेरा है, आगे जाके इतना बढ़ेगा, ऐसे तो ऐसे वो सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते। तो फिर ये धन के लिए इतना वो लोग कंपटीशन शुरू हो जाता है, अलग अलग असुरों में। असो मया हता शत्रु, वो क्या करते हैं, मैं इस शत्रु को मार दिया, उसके कारण एक दूसरों को मारते हैं वो लोग। हनिष्ये चा परन अपि, और आगे जाके इस इतने लोगों को मारूंगा। तो इसका अर्थ ये भी है कि अभी बिजनेस में क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, है कि नहीं। तो वो लोग वो बिजनेस कॉम्पिटिटर को दबा देना, राइट और नॉट, वो भी हतो शत्रु, इतने सारे मैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स को क्या कर दिया, दबा दिया, तो और आगे जाके इतने सारे लोगों को भी दबा दूंगा ऐसे। और बड़े बड़े ऐसे शॉपिंग मॉल आते हैं और छोटे छोटे ये शॉप्स रहते हैं ना, उनको निगल लेते हैं वो लोग, स्वैलो देम। तो ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, तो वो लोग सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि धन क्या देता है उनको, ऐसा लगता है कि बहुत शक्ति प्राप्त होता है उनको, इसलिए वो लोग सोचते हैं मैं ही भगवान हूँ, तो मैं ही भोगता हूँ। वास्तव में कौन भोगता है, भगवान कृष्ण ईश्वर है वो भोगता है। और सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ। तो मैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत प्रभावशाली लोग हैं। अड्यो बीजवान अस्मि कौन अस्ति सदृशो मया, मेरे समान और कौन हो सकता है। तो यक्षे दस्यामि मोदिस्से इत्यज्ञान विमोहितः, कभी कभी वो लोग ऐसे धार्मिक कार्य भी करते हैं, यक्ष दक्षामि ऐसा, कभी कभी चंडी याग भी करते हैं वो लोग। तो ऐसे तो आगे के श्लोक में भी भगवान, अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावर्ता प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरकेशु चो, वो लोग ऐसे कई सारे चिंताओं में भ्रमित होकर मोह जाल में फंस के प्रसक्त काम भोगेशु तो पतंती नरकेशु चो, नरक में गिर जाते हैं, ऐसे भगवान कह रहे। तो वो हम लोग चर्चा कर रहे थे अन्यायेन अर्थ संचय करके। तो हम कह रहे थे कि जो धर्म का पालन करते हुए धन संपत्ति करना, अर्थ को प्राप्त करना, तो छोड़कर जो भी है वो सब अन्यायन है। तो हम लोग वो कह रहे थे आधुनिक समाज में जो भी हम लोग धन इकट्ठा करते हैं सब अन्यायन है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जो करते वो नहीं है। तो क्यों क्यों यह एक और दृष्टिकोण से हम लोग इसको समझ सकते हैं, अन्यायन अर्थ संचय कैसे। ये जो करेंसी जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कागज की मुद्रा, कागज मुद्रा कहते हैं, पेपर करेंसी है ना, यही चीटिंग है पूरा। क्यों? तो क्या होता था, पहले जमाने में सोने के सिक्के होते थे और हम सुबह चर्चा कर रहे थे, छोटे छोटे चीज़ों को वो लोग कैसे आदान प्रदान करते थे। तो कॉपर के सिक्के थाम्र थाम्र कहते हैं ना, और उससे भी थोड़ा और कॉस्टली आइटम्स है तो सिल्वर सिक्के होते हैं ना, उसको एक्सचेंज करते थे, और उससे भी ज़्यादा क्या है तो वो गोल्ड, और पूरा दुनिया भर गोल्ड जो है वो सोने के सिक्के वो स्वीकृत थे, इट वाज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड। तो ऐसे होता था, धीरे धीरे क्या करने लगे, क्योंकि क्यों सोने के सिक्के को प्रभुपाद जी वर्णन करते, ये सब चीज़ हम जो भी कह रहे हैं चर्चा कर रहे हैं वो सब प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले ही सब चर्चा किया होगा। तो क्यों सोने को स्वीकृतता, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टिकोण, आप एक लोहा होता है ना आयन आयन, तो लोहा और सोने को तुलना करेंगे तो सोना, सोने का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है ना। तो आप सोना सोने के सिक्के बनाएंगे, जो लोहे के सिक्के बनाएंगे तो आप बस भर के वो लोहा लेके जाना पड़ेगा है कि नहीं, मार्केट में कुछ खरीदना है तो, लेकिन सोना है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है इसके कारण कम वैल्यू। तो फिर भी लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, सोचने लगे ये सब सोना सिल्वर चांदी या थाम्र ये सब बहुत ज़्यादा ये आसान नहीं है, सरल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ये आसान ये बनाएंगे। तो क्या करने लगे, तो सोने के अनुसार जितना सोना होता है उसके अनुसार क्या करने लगे, इसको प्रिंट करने लगे। अभी हमारे देश में इतना सोना है उसके अनुसार हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, उसको गोल्ड रिजर्व कहते हैं। तो ये प्रिंट करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे ना हम लोग, ये इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण समाज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया 16वीं सदी में, और विशेष करके 18वीं और 19वीं सदी में बहुत वो बड़े पैमाने पर सब प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए। तो नया नया चीज़ को इन्वेंट करना शुरू किया, आजकल ये स्मार्टफोन आ गया ना अभी, तो ऐसे कई सारे चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू किया, और जो ज़रूरी नहीं है जीवन के लिए है कि नहीं, तो ऐसे चीज़ों को बनाना शुरू किया, और इतने बड़े पैमाने पर लोगों के पास उसको खरीदने के लिए धन चाहिए है कि नहीं, लोगों के पास धन नहीं है तो वो क्यों खरीदेंगे उसको। तो और सोना तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते, जितना प्रकृति दे प्रदान करता है उतना ही सोना होगा, तो इसके कारण ये क्या करने लगे, तो ये सिस्टम शुरू किया, करेंसी सिस्टम, पेपर, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं बड़े पैमाने और लोगों को वितरण कर सकते हैं लोन के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, और लोगों के पास क्या है, बहुत सारा ये धन होगा, और वो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये सब आधुनिक अर्थव्यवस्था है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कैसे समाज को प्रोडक्शन और जो बिजनेस या जो कंजम्पशन उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, इसको प्रिंट करना, बड़े पैमाने पर प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो इतिहास में देखेंगे तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, तो 1862 में 1862 में अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका की सरकार जो है वो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, वो एक बड़ा बैंक था वो प्रिंट करता था, ये अमेर डॉलर डॉलर प्रिंट करता था, अमेरिका में डॉलर चलता है ना। तो उन्होंने वो समझौता किया कि आप क्या करो, जितना गोल्ड है ना उससे भी ज़्यादा ये प्रिंट करो, ताकि हमारे अर्थव्यवस्था को चलाएं हम लोग, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो ताकि लोग वो खरीदी करें। तो ऐसे बैंक्स, तो ये बैंकिंग सिस्टम वगैरह शुरू हो गया। तो ऐसे ये लोगों को पता नहीं ये सब चीज़, हाँ अज्ञान में है लोग, हाँ है ना। कि उससे पहले भी एक और चीज़ क्या चर्चा करना है, यहाँ पर लिखा जाता है ना, आप देखिए, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वास्तव में ये संपत्ति नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक पेपर है ये, हाँ। लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज़, ऐसे लिख के गवर्नर का साइन होता है। ऐसा ये प्रिंट और ये सिक्का जो साइन जो है, तो वो इसको क्या कर देता है, कुछ मोल ले देता है। लेकिन वास्तव में क्या है, ये वेल्थ है क्या, कुछ नहीं है ये। तो पहले जब गोल्ड मतलब उसका कुछ वैल्यू होता है कि नहीं, वो महत्व होता है उसका। तो और उससे पहले भी वैदिक सभ्यता में गाय और धान्य को वास्तविक क्या है, वेल्थ माना जाता था। धान्यो धनवान गवयो धनवान, जिसके पास जितना ज्यादा धान्य है और गाय है वो धनवान व्यक्ति है। क्यों 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 बताइए, हम ये तो नहीं कर सकते है ना, है कि
नहीं।
जीवन में वो महत्वपूर्ण है, धान्य और दूध महत्वपूर्ण है कि नहीं, जीवन के लिए, जीवन में। तो हम लोग सुबह उठ के इसको काट के तो ब्रेकफास्ट बना के तो खा नहीं सकते है कि नहीं, या सोना भी है तो सोना कभी नहीं खा सकते है ना, है कि नहीं, सोना भी नहीं खा सकते। धान्य और दूध क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक अज्ञान है आधुनिक समाज का। लोग धान्य और दूध को महत्व नहीं देते, इसको ज्यादा महत्व देते हैं, है ना, ये अज्ञान है। और दूसरा अज्ञान क्या है, लोगों को पता नहीं है कि सरकार हमें क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, हाँ, और सरकार या क्या करता है, जो भी हो, हाँ, आपका कॉरपोरेशन जो भी हो, कंपनी हो या ऐसे आपका जो भी एम्प्लॉयर हो, वो क्या करते हैं, हमें ये देते हैं, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इतना सारा धन दे रहा हूँ करके, हाँ। पहले सरकार क्या करता है, प्रॉमिस करता है ये प्रिंट करके, हाँ, और ये व्यक्ति क्या करते हैं, आपको वो प्रॉमिस करते हैं। और हम जो भी खरीदना चाहते हैं, हम लोग जाके मार्केट में सब्जी खरीदते हैं, और हम उनको ये देते हैं, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ करके, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, चीटर्स चीटर्स सिस्टम हो जाता है। कि तो ऐसे वो सिस्टम हो जाता है। और तो ये क्योंकि ये वास्तविक वेल्थ नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं ये आपको दे रहा हूँ करके। तो एक यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, कि फिर भी मुझे प्राप्त हो रहा है ना, सब्जी प्राप्त हो रहा है, दूध प्राप्त हो रहा है, धान्य प्राप्त हो रहा है, ये पेपर देकर भी, क्यों आप बोल रहे हैं कि ये वेल्थ नहीं वास्तविक, हम लोग उसको थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। तो आजकल क्या होता है, ये डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं ना मोदी, तो मोदी ने क्या अनाउंस किया पहले 2 महीने पहले, क्या 500 का और 1,000 रुपए का नोट क्या नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला, बैन कर दिया उसने। तो फिर वो उसका क्या वैल्यू हो गया, है ना, सिर्फ वो पेपर, वो उसको रिसाइकल करके कुछ फिर से नोट प्रिंट करने वाला। हाँ आजकल, आज हमें देवहरि प्रभु बता रहे थे, अभी उसको रखा तो आपको जेल में भी डाल देंगे, हाँ है कि नहीं। तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा, सिर्फ एक अनाउंसमेंट है ना। तो ये एक अनाउंसमेंट क्या किया, रातों रात क्या होया, कितने सारे जो धन था उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा। है कि नहीं? अभी समझ में आ गया ना क्या इसका कोई वैल्यू नहीं करके। तो ये एक चीज है। और अभी वो सभी इंटरनेट बैंकिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आजकल जो शहर में लोग रहते हैं, जो सभी ये स्मार्टफोन इंटरनेट और जो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, वो लोग सोचते हैं हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। गांव में जो लोग हैं जिनको ये पता नहीं है इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, वो लोग क्या है, अज्ञान में है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वास्तव में जो शहर में वो भी अज्ञान में है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये पूरा क्या है, चीटिंग सिस्टम है ये करके। तो अमेरिका में लोगों को पता नहीं है, और पूरा दुनिया का जो नोट अभी कैसे प्रिंट किया जाता है, अलग अलग डॉलर सब जगह नहीं चलता है। हम भारत में रुपी चलता है, और यूरोप में यूरो चलता है या पाउंड चलता है। ये सभी जो करेंसी है डॉलर्स के अनुसार, कितना आपके पास डॉलर्स है, अमेरिकन डॉलर है, उसके अनुसार इसको प्रिंट कर सकते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये प्रिंट करता है भारत में। तो पहले डॉलर ही चीटिंग है, क्योंकि वो गोल्ड रिजर्व के अनुसार वो प्रिंट नहीं करते हैं वो लोग। तो भारत में लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास कितना सोना है उसके अनुसार प्रिंट कर रहे करके सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, डॉलर्स के अनुसार ये सभी प्रिंट होता है। आप जितना अमेरिकन डॉलर भारत में है वो, तो उसके अनुसार क्या है, इसको प्रिंट किया जाता है। तो पता नहीं और क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि तो अभी कुछ देश क्या है वो इसके बाहर आ रहे हैं वो लोग, क्योंकि आज तक अमेरिका क्या सबको गुमराह कर रहा था, अभी रशिया और चाइना ये सब क्या कर रहे हैं, वो इससे दूर हो रहे। क्यों हम लोग अमेरिका के डॉलर के अनुसार क्यों प्रिंट करें करके, तो इसलिए उनके बीच में क्या है, अभी कोल्ड वॉर चलता है। तो और ऐसे लोग, सब लोग, हम सब लोग क्या है, अज्ञान में है, हम पता नहीं है इकोनॉमिक्स कैसे चल रहा है करके। तो वो जो प्रश्न हमने उठाया था, फिर भी हम खरीद पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये सब क्या है, मिथ्या है, दिस इज फॉल्स वेल्थ, चीटा, फिर भी मैं खरीद पा रहा हूँ ऐसा लगता है ना। तो वास्तव में जो असली चीज है वो हमें इससे प्राप्त नहीं होता है। लोगों को क्या है, जो चीप क्वालिटी नकली चीजों को बना के बेचा जाता है। आपको असली चाहिए, मैं एक उदाहरण दोपहर में दे रहा था ना, आपको सही में गाय का घी चाहिए, क्या आप खरीद सकते हैं इसे? असली दूध है, गाय का दूध, क्या आप खरीद सकते हैं इसे? नहीं है ना। तो लेकिन क्या है, गुमराह किया जाता है लोगों को। हाँ, ये पैसे से आपके खरीदने की जो शक्ति है, परचेजिंग पावर, आप इसको कमाओ, इससे आपको क्या प्राप्त होगा, खरीदने की शक्ति मिल जाएगा, परचेजिंग पावर मिल जाएगा। ऐसे लोगों को चीटिंग किया जाता है, सरकार चीटिंग करता है, बैंक सरकार तो चीटिंग करते हैं, लेकिन वास्तव में प्राप्त नहीं होता इससे। जो तथाकथित है ना, जो धान्य है, हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और कुछ सफेद वस्तु, सफेद चीज है, व्हाइट सब्सटेंस सोल्ड एज मिल्क, सब घी भी, वो वास्तविक घी नहीं रहता है, लेकिन उसको घी करके वो सिक्का डाल के उसके ऊपर छाप के बेचा जाता है। क्या असली चीज मिलता है? नहीं ना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, अन्न खाने का उद्देश्य क्या है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, 17वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। तो अगले अध्याय में कि अन्न खाने से क्या होना चाहिए, आयु बढ़ना चाहिए, मन और हृदय शुद्ध होना चाहिए, और बल, शारीरिक बल मिलना चाहिए, और आरोग्य हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और सुख और संतुष्टि मिलना चाहिए। क्या ऐसे होता है? क्यों इतना सारा हॉस्पिटल बढ़ रहा है फिर? क्यों ऐसे नया नए रोग क्यों आ रहे हैं फिर आपके अंदर? अच्छा, वो सही मात्रा में सही आहार और अन्न और धान्य है, दूध है, घी है, तो क्यों इतने सारे रोग बढ़ रहे हैं? पहले जमाने में कहाँ पर था ये HIV, कैंसर, हेपेटाइटिस, क्या क्या नया नया चीज़ आया है ना आजकल, पहले जमाने में लोग ज़्यादा जीवन भी बिता लंबा जीवन बिताते थे ना, उनका शारीरिक बल भी था ना। अभी जयपुर और फैलेस में जाएंगे आप, वो राजा का जो यू नो जो तलवार जो है, आप उठाने के लिए कोशिश कीजिए, आप उठा नहीं पाएंगे। कोई भी यहाँ पर जो भी बैठे हैं, कोई भी उठा नहीं पाएंगे, या मुश्किल से आप उठा पाएंगे। तो वो कैसे करते थे, वो वैसे चीज़ों को उठाते थे और युद्ध करते थे, और अन्य बहुत सारे भी उनका ये क्या है, रक्षा कवच हुआ करते थे, क्योंकि उनके अंदर शारीरिक बल था। तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमें खरीदने की शक्ति प्रदान कर रहा है, परचेजिंग पावर दे, लेकिन वास्तव में नहीं है। तो अभी एक और पॉइंट पर आते हैं हम लोग, ये पेपर करेंसी इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का अर्थ है कि सामग्री जो वस्तुएं हैं, सामग्री जो है धान्य है दूध है, उसका जो वैल्यू है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाता है, और इसका जो वैल्यू है वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंट ज़्यादा प्रिंट करते जाते हैं ना, प्रिंट करके वितरण करते हैं ना बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो फिर वो जो वस्तुओं का जो क्या है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है ना। दाल का खांद, और क्या है, खांदी पप्पू, क्या क्या बोलते हैं, खांदी पप्पू, कितना केजी, हाँ कितना केजी है, 200 रुपए केजी,
नहीं अभी कम हो गया सर,
अभी कम हो गया,
अभी 100 100
लेकिन
की
पहले
बात
से भी बड़ा है ना,
नहीं अभी, हाँ वो तो
है कि नहीं, वो बात बता रहे
हैं।
पहले से भी बड़ा,
अभी
आपका
जो
बचपन में कितना था, कितना आपके बचपन में,
बचपन में हमारे शायद 1 रुपया
हाँ है कि नहीं,
रहा
अभी 140 रुपये, 100 रुपये, हाँ है कि नहीं, 100 गुना बढ़ गए ना,
होगा।
100 गुना बढ़ गए ना,
हाँ जी
है कि नहीं। तो इसका वैल्यू कम होता ही जाता है, लोगों के पास ही यह सब बहुत है, ये बहुत है लेकिन उनको जो चाहिए जीवन में वो नहीं है, उसका वैल्यू क्या है, बढ़ जाता है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन अभी इन्फ्लेशन वास्तव में हमें खरीदने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग खरीद पा रहे हैं, क्यों पता है ना, अभी भी हमेशा इन्फ्लेशन है। लेकिन इन्फ्लेशन को भी डका डका जाता है, कैसे डका जाता है, बड़े पैमाने पर बहुत सारा चीप क्वालिटी, बहुत ही कम दर्जा वाला वस्तुओं को, सामग्रियों को उत्पन्न करके उसको मार्केट में एडवर्टाइजिंग के द्वारा क्या कर किया जाता है, बेचा जाता है। तो वही उदाहरण हम लोग देंगे तो, हाँ क्या वास्तव में घी हमें उपलब्ध है, नहीं है, है ना, लेकिन चीप क्वालिटी का बहुत सारा घी मिलेगा, वो लोग गाय का घी भी उसके ऊपर छपेंगे ना, है कि नहीं। तो इसलिए अभी भी हम लोग इन्फ्लेशन में हैं, ऐसा नहीं कि जब रिसेशन आ जाता है फिर इन्फ्लेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है, हमेशा हम लोग इन्फ्लेशन में हैं हम लोग, लेकिन उसको कवर किया जाता है। तो ये इसका समस्या है, और इससे हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे हम लोग इससे, हाँ या आज का अभी का प्रवचन हमने कैसे शुरू किया, पेपर करेंसी का क्या आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है, धार्मिक जीवन से क्या संबंध, भक्ति जीवन से क्या संबंध है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुबह भी चर्चा कर रहे थे, पहले जमाने में क्या होता था, बार्टरिंग होता था, है ना, आपके पास धान्य हो, दूध के पदार्थ हो वो दे दो, और जो नहीं है वो ले लो, और टैक्स भी क्या करना है, तो वही चीज़ों को देना है, हाँ सरकार को या राजा को। हाँ सुबह हम उदाहरण दे रहे थे ना, जब भगवान नंद महाराज, भगवान कृष्ण के पिताजी, वो मथुरा में गए वो, तो कंस को टैक्स देने के लिए, क्या टैक्स दिया उन्होंने, दूध के पदार्थ, क्योंकि वो दूध उत्पन्न करते थे, हाँ वो ग्वाल है, ग्वाल है, ग्वाल गोप थे वो लोग, तो वो दूध के पदार्थों को लेकर गए वो, हाँ अपने सभी ग्वाल, अन्य ग्वालों के साथ, टैक्स कंस को टैक्स देने के लिए, ऐसे होता था। तो फिर 5,000 साल पूर्व ये गोल्ड, हाँ सोने के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद ये आ गया। तो एक व्यक्ति सिर्फ धान्य और दूध के पदार्थों को उत्पन्न कर रहे हैं तो वो पापी नहीं बनेगा, वो अधार्मिक नहीं बनेगा। तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे धर्म का अलग अलग अर्थ होते हैं, धर्म शब्द को अलग अलग अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। तो बैल के साथ वैदिक नियमों को पालन करते हुए बैलों के साथ, बैल आप जानते हैं ना, ऑक्स ऑक्स बुल्स, उसके साथ जो खेती किया जाता है उसको भी एक, उसको भी हम लोग धर्म कहते हैं। धर्म का वो दूसरा नाम है, ऐसा जो कृषि किया जाता है वो धर्म है। भागवत में भी बताया गया है ना, बैल को धर्म का चिन्ह बताया गया है। और तो उनको हमारे पिता बताया गया, और गाय को हमारा माता बताया गया। सात माताओं में एक माता है गाय। तो क्योंकि वो मनुष्य शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए जो बहुत ही जरूरी है दूध, वो प्रदान करती है। तो हम बता रहे थे अन्न खाने का उद्देश्य है आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। तो गाय का जो दूध जो है वो सर्वोच्च मात्रा में यह आयु, सत्व, बल, आरोग्य प्रदान करती है। इसके कारण उसको मिरेकल फूड का एक चमत्कारी अन्न बताया गया है, गाय के दूध को। तो शरीर को बहुत सुदृढ़ बनाता है, आयु को बढ़ाता है, मन और हृदय को शुद्ध करता है, और आरोग्य हेल्थ बढ़ाता है। तो सुख और संतुष्टि प्रदान करती है। आप अभी भी अनुभव करते हैं ना, जब भी आप वो क्या है वो कर्ड राइस वगैरह खाएंगे तो कितना संतुष्टि मिलता है ना, है कि नहीं? दही चावल है कि नहीं? मज्जी का अंडा है कि नहीं? तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं अभी भी। तो एक व्यक्ति ऐसे कृषि कर रहा है वो कैसे पाप करेगा, है कि नहीं? तो पाप करेगा तो भी क्या है, क्योंकि भौतिक जगत में हमेशा लोग क्या है इंद्र तृप्ति करते रहते हैं। अगले साल में क्या होगा, बारिश नहीं होगा, क्योंकि जब भी पाप करते हैं तो अगले साल में क्या होगा, बारिश नहीं होगा। तो हाँ, प्रकृति क्या कर देते हैं, उनको नियमित करते हैं। इसलिए कोई पाप और इंद्रिय भोग, ऐसे असुर जो लोग इंद्रिय भोग करते रहते हैं, इंद्रिय लोग में डूबे रहते हैं, ऐसे नहीं होते एक व्यक्ति। तो इसलिए अर्थव्यवस्था क्या होना चाहिए, ऐसे कृषि के आधार पर अर्थव्यवस्था होना चाहिए। धान्य उत्पन्न करना, दूध उत्पन्न करना, ऐसे इसके आधार पर। तो जब अर्थव्यवस्था सोना इंट्रोड्यूस किया गया, सोने के सिक्कों को, भागवत में आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, जहां पर भी सोना रहता है, 5000 पूर्व परीक्षित महाराज जब खली, इस युग को कलियुग कहते हैं ना, वो मूर्तिमान व्यक्ति जो खली है, वो परीक्षित महाराज के जब पास आए थे, उनको पूछा उन्होंने, मुझे आपके राज्य में स्थान दे दो। तो परीक्षित महाराज उनको वो चार स्थान दिया उन्होंने, जहां पर मांस भक्षण होता है, मादक मदिरा और मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है, और व्यभिचार स्त्री संग किया जाता है, वेश्यावृत्ति किया जाता है, और जहाँ पर गैमलिंग मतलब जो जुआ खेलते हैं तो वहाँ पर आप रहो करके परीक्षित महाराज बताए। लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर ये चीज़ लोग करते थे। सभी लोग बहुत ही धार्मिक थे, कोई भी पापी नहीं थे। तो पूरा पृथ्वी भर उनका राज, पूरा पृथ्वी भर चलता, ये छोटा भारत नहीं है। तो ये एक ऐसा भी जगह नहीं था। फिर खली फिर से परीक्षित महाराज के पास आते, तो फिर परीक्षित महाराज क्या करते हैं उनको, तो उनको एक और जगह देते जहां पर सोना रहता है वहां पर रहो करके, क्योंकि सोने से क्या है लोग खरीदना शुरू कर, उनको खरीदने की शक्ति प्राप्त हो जाएगा। वो लोग ऐसे मांस, महिला, मदिरा ये सब खरीदना शुरू कर देंगे, ऐसे लोग पाप करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी सोने के सिक्के है, वो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, तो ज़्यादा पैमाने पर क्या हो जाता है, नियमित हो रहते हैं लोग, वो लोग ज़्यादा ऐसे पापी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि सोना तो हम लोग ज्यादा बना नहीं सकते और लोगों को वितरण करके वो लोग उनको खरीदने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो जितना प्रकृति में सोना उपलब्ध है उतना ही हम लोग उसको शोषण कर सकते हैं। लेकिन जब ये आ जाता है तो क्या हो जाता है? तो लोग क्या है, असीमित इंद्रिय भोग, असीमित पाप करना शुरू कर देते हैं। क्यों दुनिया में इतना पाप गढ़ गया? कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, क्यों लोग इतना पापी हो गए, कितना इतना मांस भक्षण। यहाँ हैदराबाद में तो, हैदराबाद सिकंदराबाद में हर एक कोने कोने पर क्या आप देखेंगे, वो मांस का वो क्या है ना शॉप, मीट शॉप देखेंगे। हाँ, तो ऐसे हमने बताया कि पूरा भारत में ये जो तेलंगाना और आंध्रा है जहाँ सबसे ज़्यादा मांस भक्षण होता है। हाँ, और विशेष करके हैदराबाद सिकंदराबाद में 97% पीपल मांस, 99% लोग मांस भक्षण करते हैं ऐसे। हाँ, तो क्यों? इसके कारण, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है, ये बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हैं ना। हाँ, करके लोग खरीद सकते हैं। हाँ, और ऐसे पशुओं का हत्या होता है, क्या क्या पाप नहीं है, अबॉर्शन, इलिसिट सेक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये सब चीज़ सब दुनिया में जो भी है सब शुरू हो जाते हैं इसके कारण। इसलिए आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे भागवत में क्या है, सोने को भी पीला मल बताया गया, येलो स्टूल, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में बड़े चढ़े हुए हैं, प्रगतिशील है, वो लोग क्या इंद्रिय भोग को एक मल के समान सोचते हैं, तुलना करते हैं वो। और सोने को येलो स्टूल बताया गया तो ये क्या है, ये उससे भी गिरा हुआ है ना, क्योंकि इसके कारण लोग कितने सारे पाप और इंद्रिय भोग करेंगे। तो इसलिए ये सब बहुत खतरनाक है। लोग बहुत भौतिकवादी हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। और आधुनिक शिक्षा भी क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन लोगों को क्या करता है, इट्स ओके, व्हाई यू आर ऑल डिस्टर्ब, सिट सिट। तो ये पूरा प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्या है, लोगों को आत्म साक्षात्कार जीवन में सर्वोच्च जो आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षण नहीं है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैसे ऐसे भोगी बनो, ऐसे कैसे पापी बनो, ऐसे कैसे नास्तिक बनो, भौतिकवादी बनो, ऐसे प्रशिक्षण बच्चों को आरंभ से प्रदान। तो एजुकेशन का उद्देश्य क्या, आजकल वो ज्ञान प्रदान नहीं करते, ज्ञान हम लोग वेद मतलब ज्ञान है। तो ज्ञान मतलब ज्ञान कैसे आरंभ होता है, भगवद गीता में आत्मविद्या के आरंभ होता है। तो पहला चीज भगवान क्या करता है अर्जुन को, तुम क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित के समान आप जैसे बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या तुम अज्ञान में हो, मूर्ख हो तुम। क्योंकि ज्ञान कैसे आरंभ होता है, आत्मा के ज्ञान से आरंभ होता है। तो आत्म साक्षात्कार से ज्ञान आरंभ होता है, लेकिन आधुनिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में कोई ज्ञान प्रदान नहीं करते। उनको क्या प्रशिक्षण देते हैं, कैसे इसको धन इसको इकट्ठा करना चाहिए, तुम आगे जाके पढ़ाई करके जॉब प्राप्त करके किसी न किसी तरह इसको इकट्ठा करके बहुत सारा इंद्रिय भोग और पाप करो, तो नास्तिक बनो, तो ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो लेकिन पहले जमाने में प्रशिक्षण क्या है, गुरुकुल में क्या शिक्षा दिया जाता था, यह आत्मविद्या प्रदान किया जाता था, और धर्म को पालन करते हुए कैसे अर्थ संचय करना वो प्रशिक्षण दिया जाता था, तो धार्मिक जीवन में, तो ये गुरुकुल शिक्षा है। तो इसलिए ये क्या है, तो बहुत ही खतरनाक है ये आध्यात्मिक जीवन के लिए, और समाज के लिए भी बहुत खतरनाक है। अंत में क्या है, लोग जहाँ पर भगवान यहाँ पर बताते हैं ना, पतंती नरके शुचो, नरक में वो गिर जाएंगे, नरक चले जाएंगे लोग। तो आजकल दुनिया में लोग नरक को मानते नहीं हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो शहर है, एक दो नरक का, हैदराबाद भी एक नरक है ना। प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी लंदन में थे, हमारे संस्थापक आचार्य, और उनको एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपने नरक देखा है? तो प्रभुपाद जी ने पूछा, ये लंदन नरक नहीं है क्या? ऐसे प्रभुपाद जी पूछे, 6 महीना क्या है, सूरज का प्रकाश ही नहीं आता है, तो निचले लोकों में, नरक लोकों में सूरज का प्रकाश नहीं आता है। तो ऐसे ये बड़े बड़े शहर में क्या है, नरक, नरकीय जीवन नहीं है। है ना, इतना सारा ट्रैफिक, इतना सारा पोल्यूशन, इतना सारा डिसीजेस, दिन रात मेहनत करना। हाँ, क्या पहले जमाने में रात को काम करते थे लोग? तो ये क्या सुख है ये, रात को भागदौड़ करना? प्रभुपाद जी बोले टेक्नोलॉजी इज उग्र कर्म, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उग्र कर्म। तो ये वो उग्र कर्म शब्द यही 16वें अध्याय में आता है, असुर लोग हमेशा उग्र कर्म में लगे रहते। तो वो नवे श्लोक में क्या है, ये ताम दृष्टिम अवस्टाभ्य नष्टात्मनो अल्प बुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयायो जगतो हितः। जगत को नाश करने के लिए और लोगों को अहित करने के लिए असुर लोग हमेशा क्या है, उग्र कर्म करते हैं, तो नरक का सृष्टि करते हैं। तो हम फार्म में रहते हैं, हम फार्म से जब प्रचार करने के लिए बाहर आते हैं तो धीरे 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 नरक का जो इंटेंसिटी है तो वो बढ़ता जाता है। जब तक हम लोग सिकंदराबाद और हैदराबाद पहुंच जाते हैं तो उसका परिपूर्ण इंटेंसिटी हम लोग अनुभव करते हैं। धीरे धीरे मसाई पेट से शुरू हो जाता है, फिर यादगिरी गुटा आएंगे तो और बढ़ जाता है, और बोंगीर आएंगे तो और थोड़ा बढ़ जाता है, और जब नरक का प्रभाव, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हेलिश, तो जब हम लोग बहुत समय तक शहर में प्रचार करते हैं, जब वापस फार्म में जाते हैं और विश्रांति लेते हैं, सोते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कई कितने दिनों तक हम सोए ही नहीं थे, ऐसे अनुभव होता है हमको। तो ये नरकीय जीवन है। एनीवे, तो इसलिए ये सब क्या है, तो ये सिस्टम सब लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो ये बहुत आजकल प्रचलित है कि धन कमाने से, वे ऐसा करेंसी कमाने से हम सुखी हो जाएंगे करके लोग, सब लोग, यही सबसे बड़ा ज्ञान है आधुनिक समाज का। तो ये सब बहुत ज्ञान हमें समझना चाहिए भगवद गीता से। तो ये सब चीज हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये क्या भक्ति से इससे क्या संबंधित है, हमें हरे कृष्ण करना है, भगवान के लीलाओं को सुनना है, भगवान ने क्या क्या लीला किया, रासलीला किया, ये किया, वो किया, गोवर्धन उठाया, तो ये सब क्यों चर्चा करना है, इकोनॉमिक्स, पेपर करेंसी, ये सब क्यों? तो क्योंकि ये सब संबंधित है। हम लोग प्रचार करते हैं ना लोगों को, आप कृष्ण भक्त बनो, लेकिन जब तक वो ऐसे पापमय जीवन में लगे रहते हैं तो कैसे वो कृष्ण भक्ति करें, है कि नहीं? हमारा प्रचार कैसे, प्रचार कैसे बढ़ेगा हमारा? सिर्फ आप कुछ लोग ही भक्ति करने वाले हैं या दूसरों को भी भक्ति प्रदान करने वाले? तो जब तक ऐसे अर्थव्यवस्था बदलेगा नहीं, जब तक अर्थव्यवस्था ऐसे कृषि के आधार पर नहीं रहेगा, तब तक हम लोगों को भक्त नहीं बनाएंगे, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो और जो भी भक्ति स्वीकार करेंगे वो लोग भी बहुत ही सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, बहुत ही ऊपरी ऊपरी स्तर पर रहेंगे, वो लोग गहराई में भक्ति में स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि हम बता रहे थे सुबह, हम देवहरि प्रभु को बता रहे थे, कितना मेहनत करके प्रचार करने के बाद भी अंत में क्या है, एक बेसिक स्टैंडर्ड सुबह जल्दी उठ के जप करने के लिए लगा नहीं सकते हम लोग। लोगों को किसी न किसी तरह वो जब हर रोज सुबह से शाम तक कुछ कुछ ऐसे करते रहते, तो ये समस्या है। लेकिन पहले जमाने में लोगों को कितना सारा समय था, सुबह शाम हर रोज वो गीता भागवत महाभारत रामायण सुना करते थे लोग, है ना? तो ये अज्ञान है। तो ये अज्ञान क्यों ऐसे हो गया, भारत ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है ना, तो आरंभ से सभी आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, यही है आपका जीवन का लक्ष्य है करके, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? बाद में पूछ, ठीक है। या शिला प्रभुपाद जी ने उसके लिए भी प्रकल्प, इससे कैसे बचेंगे ऐसा सिस्टम से, तो हमें ये सिस्टम से बाहर आना चाहिए। जैसे हम बता रहे थे जो अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित रहना चाहिए। आजकल क्या है, ये नेता लोग क्या है अपने, वो सब ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट इतना उनके मन में भरा है आजकल, आधुनिक भारत के वासियों को आजकल ये सब कर रहे हैं ना हमारे आधुनिक प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब अज्ञान है, तो हमें ये समझ के, तो प्रभुपाद जी ये फार्म कम्युनिटी शुरू किया पहली बार 1968 में, तो न्यू वेस्ट वर्जीनिया में 1500 एकड़ जमीन लेकर उन्होंने ये फार्म कम्युनिटी शुरू किया था प्रभुपाद जी। और वो उनका तिरोभाव होने से पहले 10-12 साल में वो कई सारे ऐसे फार्म कम्युनिटी शुरू किया उन्होंने। लोग उनके लिए जो भी ज़रूरी है जीवन के लिए, बहुत ही सरल जीवन बिताना, जैसे पुराने ज़माने में मतलब 20 साल पहले बहुत सारे लोग, आप बचपन में वैसे जिया था आपने, यहाँ पर भी हाँ, तो विजय प्रभु पता है वो बताया था हमें उन्होंने, तो सरल जीवन बिताते थे लोग। उनके लिए जो भी चाहिए साल भर में अपने अपने जीवन के लिए उसको इकट्ठा करते थे, तो और वो समय है वो भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए भारत में इतना आध्यात्मिक संस्कृति था। तो आजकल भारतवासी सभी भौतिकवादी बन गए सब लोग, तो नाम से हिंदू है ना, किसी को भगवद्गीता में क्या वर्णन है, क्या जीवन शैली भगवान बताया, कुछ पता नहीं। स्वयं भगवान जो सर्वोच्च सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो आके क्या करते थे, गाय चरण, गोपाल है ना वो, गोचरण किया। लेकिन आधुनिक भारत के वासी वो सोचते हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया तो मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, ऐसा सोचते। एनीवे आपका प्रश्न है, तो वैसे फार्म कम्युनिटी करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। और कुछ हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। मैं ये अंदर रखता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मुझे ये ग्रेन ले लो और ट्रेन का टिकट दे दो या बस का टिकट दे दो, और ये प्रवचन सुन के आप मुझे पैसा देना बंद मत कर दीजिए। हरे कृष्ण।